मैं पृथ्वी हूँ, सदियों से मानव जाति को आश्रय प्रदान करती आ रही हूँ। मैंने मानव को उसकी सुरक्षा और सुख के लिए अनेकों उपहार दिए हैं। हवा, पानी, खाद्य सामग्री आदि उसकी जीवन के अस्तित्व के लिए दिए हैं। पेड़ पौधों ने मुझे हरा भरा बनाकर प्राणी जगत को जीवन प्रदान किया है। प्राचीन काल से ही मनुष्य मेरे गोद में निवास करता आ रहा है। तब उसकी आयु लंबी होती थी और उसको कोई रोग नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे मानव पेड़ पौधों से दूर होता गया, वैसे वैसे ही रोगादि भी उसके साथ लग गए। आज के औद्योगिकरण के इस दौर में मानव ने पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया है, जिससे हवा प्रदूषित हो रही है। मेरा तापमान बढ़ गया है, पानी दूषित हो रहा है। आज विभिन्न प्रकार का प्रदूषण मेरे अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। मानव जाति से यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए, मुझे जितना हरा भरा रखेंगे उतना ही वातावरण शुद्ध होगा। मानव जाति तो जानती है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए हर जीव को सांस की आवश्यकता है। बिना हवा के ये जीवन संभव नहीं है, और हम उस हवा में सांस लेते हैं जो मुझ में समाई है। अगर प्रकृति से खिलवाड़ किया जाए तो ये तो तय है कि प्रकृति भी नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए इस बारे में मानव जाति को सोचना होगा।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशा और मेरे साथ हैं सुरेश।
आप सभी को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में कही गई बातों से ऐसा महसूस होता है कि हमारी पृथ्वी कई तरह के संकट का सामना कर रही है।
सुरेश, आज 22 अप्रैल विश्व धरती दिवस है, तो क्यों ना आज हम अपने कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करें।
हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व धरती दिवस के बारे में। आशा, पहला धरती दिवस 22 अप्रैल 1970 को यूनाइटेड स्टेट के सेनेटर गैलॉर्ड नेल्सन द्वारा शुरू किया गया था, जिन्हें फादर ऑफ अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है,
जिसका प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी के वातावरण के बारे में जानकारी फैलाना है।
आशा, आज पृथ्वी का वातावरण कई तरह से दूषित हो गया है। प्रकृति की दी हुई हवा जो पेड़ पौधों से शीतलता प्राप्त कर प्रवाहित होती है, आज अनेक प्रकार के वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रदूषित हो गई है।
सुरेश, आपने बिल्कुल सही कहा। कारखानों की जहरीली गैसें व धुआं वायु को गंदा कर देते हैं। परिणाम स्वरूप यही दूषित वायु जब हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है।
आशा, शायद ये लोगों की धारणा है कि धरती पर सब कुछ जायज है और ये हर तरह का बोझ उठाने में सक्षम है, तभी तो हर जगह कूड़े के ढेर पनपते हैं,
और जिससे जहरीली गैस ग्रीन हाउस गैसों से ज्यादा बढ़ जाती है।
दोस्तों, इस विषय पर हमने बात की कुछ लोगों से और जाना कि प्रकृति को प्रदूषण से बचाने के लिए वे अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं।
मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं यहाँ पे IIT की प्रिपरेशन करता हूँ। और आज ये जो समस्या हमारे सामने है पॉल्यूशन की, ये काफी गंभीर रूप लेते जा रही है। इसलिए हमारी तरफ से यही उपाय होनी चाहिए कि हम ऐसे उपायों को यूज करें, जैसे कि CNG हुआ, जैसे कि या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बदले हम यदि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को बंद करके शुरुआत करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो इससे काफी हमारा ये पोल्यूशन कम हो सकता है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम हर एक आदमी अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करें, जैसे कि हमारे देश और पूरे इस दुनिया की बचाव हो सके पोल्यूशन से। धन्यवाद।
मेरा नाम अपर्णा है और ज्यादा तो नहीं, लेकिन पर्सनल लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में जितना ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स को लिमिटेड यूज करना जहाँ पे बहुत ही जरूरत है, एंड किसी भी प्लांट को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना। और एक हमें अपने बुजुर्गों से मिलता है कि आसपास में एक दो पौधे लगा के रखना, उसको एनकरेज करना, घर में CFL यूज करना, एंड पानी को भी जहाँ पे हमें जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना।
मेरा नाम सारा है और मैं जोरबाग न्यू दिल्ली से हूँ। पर्यावरण के लिए मैं एक तो पानी का बहुत कम यूज करती हूँ, जुडिशियली यूज करती हूँ, और दूसरा ऑफिस जाने के लिए मैं कारपूलिंग करती हूँ, जिससे दोनों ऊर्जा और पैसे की बचत होती है।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज, और आज हम बात कर रहे हैं विश्व धरती दिवस के बारे में।
आशा, संसार में जितने लोग हैं उनसे दिन भर में उतना ही वेस्ट होगा, और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी से उतने ही संसाधनों की जरूरत भी पड़ेगी।
सुरेश, अगर हम सही जीवन शैली अपनाएं तो पृथ्वी हमारी जरूरतें भी पूरी करेगी। आपने महात्मा गांधी द्वारा दिया गया वाक्य तो सुना ही होगा कि धरती के पास लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन है, लेकिन उनके लालच की पूर्ति के लिए संसाधन कभी नहीं हो सकेंगे।
आपने सही कहा आशा, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने अनावश्यक उपभोग में कटौती करके पर्यावरण के अनुकूल कदम उठाकर धरती को बचा सकते हैं।
दोस्तों, अपने अपने स्तर पर हम यह कदम उठा सकते हैं, जैसे बिना वजह बिजली खर्च ना करना, थोड़ी दूर चलने के लिए वाहन का इस्तेमाल ना करना।
दोस्तों, इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर SD सिंह। आइए उनसे बात करते हैं, और उनसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी मानसी।
आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SD सिंह, जो कि भारतीय वन सेवा 1988 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने 2 वर्ष की ट्रेनिंग देहरादून वन अकादमी में प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में ज्वाइन किया। इनका 20 साल का एक्सपीरियंस हमीरपुर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, सहारनपुर व देहरादून के वन, वन्य जंतु, पर्यावरण एवं शहरी रोपण आदि पर है। आजकल दिल्ली सरकार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के रूप में पिछले 8 माह से कार्यरत हैं। डॉक्टर सिंह, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इंसानों के जीवन का रहन सहन और पर्यावरण में किस तरह का जुड़ाव है?
इंसान और पर्यावरण एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर्यावरण के लिए इंसान का होना भी आवश्यक है, और इंसान के लिए पर्यावरण का होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंसान बिना पर्यावरण से नहीं रह सकता है, और पर्यावरण उसके आसपास का, जब इंसान बीच में अपनी गतिविधियां करता है तो इंसान के गतिविधियों के कारण पर्यावरण जो है थोड़ा थोड़ा खराब होने लगता है, और उसको अच्छा करने के लिए हमें समझकारी से काम लेना चाहिए, ताकि हम लोग अपना रहन सहन और पर्यावरण की एक निरंतरता आपस में बनी रहे।
धरती के पर्यावरण को बचाने के लिए एवं उसके रखरखाव में आपकी संस्था किस प्रकार के प्रयास कर रही है?
दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी ये अभी हाल ही में स्थापित की गई है, और इसके तहत जितने भी पार्क्स और गार्डन्स दिल्ली में हैं, इसके लिए जो संस्थाएं ऑलरेडी काम कर रही हैं उनके साथ में हमने जो प्रबंधन है उसको निरंतर बनाना है, और उनके ऊपर थोड़ा मॉनिटरिंग भी करनी है, ताकि ये जो पार्क्स गार्डन है ये ऑक्सीजन बैंक के रूप में, ऑक्सीजन लंग्स के रूप में हमारे पास में अच्छे बने रहें, और इसमें हम स्थानीय लोगों के साथ में रहकर इसमें प्रबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं।
इस विषय पर आप जमीनी स्तर पर लोगों को किस तरह से जोड़ते हैं, और इससे उनकी जिंदगी में क्या लाभ हो सकता है?
इसमें देखिए, हम लोगों की कोशिश ये है कि RWS जितने भी हैं या जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं जहां पर के आसपास पार्क हैं, उनके साथ में हम लोग मीटिंग करते हैं, उनके साथ में बैठ करते हैं, और उसमें उनको बताते हैं कि इनका क्या महत्व है और उनको इससे किस प्रकार से जुड़ना है। डे टू डे लाइफ में मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या दिन में साथ में वहां पर पार्क में रहना, इसमें बहुत ही उनके लिए जरूरी है, क्योंकि घर में इतना स्पेस नहीं है कि वो अपना सारा टाइम उसमें रहकर अपने आप को इकोलॉजिकली सस्टेन करें। इसलिए जरूरी है कि इन पार्क्स और गार्डन्स को हम लोग अच्छे ढंग से रखें, और हमारा प्रयास यही है कि स्थानीय लोग यदि जुड़ेंगे तो सरकारी संस्थाएं अपने आप में इन पार्कों को और अच्छा बनाने में अपना काम करेंगी, और यदि स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं होगा तो हम कितना भी अच्छा काम कर लें, ये संभव नहीं है कि वो और अच्छे बन सकें।
अर्थ डे क्या है और इसका क्या महत्व है?
देखिए, अर्थ डे ये 1969 में US ने, अमेरिका ने एक ये देखा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है हर जगह, और उससे जो हम लोग, क्योंकि जब हम ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें हर चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उससे हम लोग रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को लेते हैं, और हम लोग पर्यावरण को खराब करते हैं, तो उसमें बहुत सी धरती के बहुत से जो अंग थे वो काफी खराब हो रहे थे। तो 1969 में नेल्सन करके एक वहां पर बहुत बड़े सीनेटर हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अब पॉपुलेशन को रोकने के लिए कुछ इस प्रकार से मीयर किए जाने चाहिए ताकि जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हम सेलिब्रेट करें। अप्रैल 22, 1970 में पहली बार इसको सस्टेनेबल एनवायरमेंट और हेल्दी एनवायरमेंट के रूप में सेलिब्रेट किया गया, और इसके बाद में धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई और अब पूरे संसार में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और सन 2000 में इसको पुनः बहुत बड़े स्तर पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें लगभग 144 कंट्री उन्होंने भाग लिया था। और 1992 में तो ये यूनाइटेड नेशन अर्थ सुमिट बन गई थी रियो जिनेरियो में, और 1992 के बाद में ये लगातार इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसमें हम हेल्दी एनवायरमेंट, अर्थ में जो भी गलत चीज हो रही है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है या किसी प्रकार से जंगलों में या एक्सटिंक्शन बहुत सी स्पीसीज का हो रहा, उनको हम प्रोटेक्ट करने की, उनका प्रिजर्वेशन करने की या कंजर्वेशन करने की कार्रवाई अब कर रहे हैं।
आपके अनुसार यहाँ पर कौन कौन सी पेड़ पौधों की प्रजातियां लगानी चाहिए और क्यों?
देखिए, दिल्ली का जो क्लाइमेट है ये थोड़ा सा सूक्ष्म है और यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं वो ज़्यादातर ऐसी प्रजातियों की रोपण होना चाहिए जिनको पानी की कम आवश्यकता हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक के लिए यहाँ पर ग्रो हों। तो इसमें जैसे रोड साइड में बहुत ज़रूरी है कि हमें एवरग्रीन प्लांट्स बट लो हाइट प्लांट लगाने चाहिए, जैसे कि केशिया फिस्चुला अमलतास जिसे बोलते हैं, उसकी बहुत अच्छी यहाँ पर हो सकती है। और इसी प्रकार से ये जो फ्लाईओवर हैं उसके नीचे भी हमें कुछ शेड लविंग प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि वो जगह जो है सुरक्षित भी रहेगी, इनक्रोचमेंट नहीं होगी और उसकी हरी भरी वो बनी रहेगी। और यहाँ पर जो सेंटर वर्जीज जितने भी हैं, जो रोड साइड के रोड के दोनों के बीच में जो छोटा सा रास्ता वो होता है, स्पेस होता है, उसमें हमें बोगनविलिया आदि की ऐसी पौध लगानी चाहिए ताकि वहाँ की एक वो हरियाली भी बनी रहे, एक वहाँ बहुत अच्छा कलरफुल प्लांटेशन का भी रूप हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचे या बड़े पेड़ नहीं लगाने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से पार्क्स और गार्डन्स जो हैं, पार्कों में ये बहुत ज़रूरी है कि जो घूमने का जो रास्ता होता है उससे जो किनारा और दीवार के बीच में वहाँ पर एवरग्रीन प्लांट्स जो हैं वो लगाने चाहिए और बड़े बड़े पेड़ लगाने चाहिए ताकि वो एक हरियाली का रूप रहे और वो वुड लॉट के रूप में हमारे सामने रहे। और पार्क के जो बीच का एरिया है उसमें घास लगाया जा सकता है, उसमें छोटे छोटे श्रब्स लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार के लगाने से एक तो वहां पर मेंटेन्ड रहेगा, लोग भी उसको पसंद करेंगे और साथ में हरियाली भी बनी रहेगी जो कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही आवश्यकता है।
दिल्ली में बहुत सी रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं जहां पर कोई पार्क नहीं है, इन क्षेत्रों का विकास किस तरह से किया जा सकता है?
जैसा कि जागोरी जो एक संस्था है वो स्थानीय लोगों में, खासकर जहां बैकवर्डनेस है, अर्बन बैकवर्डनेस है, यहां पर भी ग्रीनरी होनी चाहिए। और जागोरी संस्था ने लोगों को मोटिवेट किया कि हमारे बीच में कुछ ग्रीनरी, ग्रीन लविंग ट्रीज, ग्रीन लविंग एरियाज, ग्रीनरी एरियाज या फोटोसिंथेटिक एरिया होना चाहिए ताकि वहां पर पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, ग्रीनरी है नहीं, ऑक्सीजन लंग्स नहीं है, तो कैसे वहां का जनजीवन जो है वो अच्छा खुशहाल बना रहेगा, स्वच्छ बना रहेगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जहां पे जितने भी ओपन स्पेसेस हैं या रोड साइड है या पार्क हैं या छोटे छोटे होमस्टेड के आसपास जितना भी एरिया है उसको हम पौधरोपण से और अच्छे पौधरोपण से, जैसे पिलखन, नीम, इस प्रकार के पेड़ जो हैं उनको लगाकर वहां पर हम लोग हरियाली ला सकते हैं। और स्थानीय लोग, जैसे कि जागोरी ने वहां पर लोगों को मोटिवेट किया है कि इनको हम प्लांट करेंगे और इनको हम मेंटेन करेंगे, और यदि ये मेंटेन हो जाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा सफल प्रयास जागोरी की तरफ से, हमारी दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, और जो संस्थाएं इसमें जुड़ी हैं, खासकर जो पौध देने वाली संस्था है उसका भी एक बहुत अच्छा सफल प्रयास होगा। तो ये मिलजुल कर ही प्रयास होगा। स्थानीय लोग जो हैं वो करने को तैयार हैं परंतु उनको रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होती, कई बार उनके पास में जानकारी भी नहीं होती। तो ये आवश्यक है कि हम लोग स्थानीय लोगों को मोटिवेट करें और वहां पर पेड़ आदि यदि लगते हैं तो उनको वो प्रोटेक्ट करें। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग पेड़ों को लगाएं, उनको प्रोटेक्ट करें और उनकी जो महत्वता है उसको हम समझें।
आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
हमारा संदेश यहाँ पर समस्त दिल्ली वासियों के लिए, यहाँ RWS के लिए, लैंड ओनिंग एजेंसीज के लिए यही है कि वो यदि पार्क और गार्डन्स को यदि उनका विकास करना चाहते हैं तो वो उनको हरा भरा बनाएं, उनमें जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं, एवरग्रीन ट्रीज हैं, एवरग्रीन श्रब्स हैं, उनको लगाएं ताकि एक कंप्लीट फोटोसिंथेटिक एरिया बनता रहे। और उसके लिए यदि हमसे कुछ सहयोग चाहिए हो, हमारे पास में प्रोजेक्ट अपने भेज सकते हैं। हमारा दूरभाष है 2339273636 और ईमेल आईडी है drsdsinghifs@hotmail.com।
डॉक्टर सिंह, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज और आज हम बात कर रहे हैं विश्व धरती दिवस के बारे में।
आशा, अगर भारत की बात की जाए तो सरकार ने राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर 8 मिशनों को सूचीबद्ध किया है।
बिल्कुल सुरेश, जैसे सौर फोटोवोल्टिक और थर्मल प्रणालियों के जरिए बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना,
क्षेत्र विशेष की तकनीक और वैकल्पिक ईंधनों के जरिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना,
इसके अलावा पीने के पानी को सभी जरूरतमंद इलाकों में बढ़ावा देना और जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन पक्का करना भी इस मिशन का हिस्सा है।
आशा, वनों को उजड़ने से बचाने के लिए ज्यादा सार्वजनिक और निजी निवेश पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। साथ ही 4 अहम क्षेत्रों जैसे बंजर भूमि पर खेती, जोखिम प्रबंधन, सूचना तक पहुंच और जैव तकनीक के प्रयोग को भी बढ़ावा देना।
दोस्तों, राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने के लिए भारत पर भले ही औद्योगिक देशों का दबाव रहा हो,
लेकिन कार्य योजना बनाने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत अब एक सुविचारित पर्यावरण नीति को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी मानता है। दोस्तों, हम सब एक हैं, अलग अलग राष्ट्र राज्यों में रहते हैं, हमें अपनी विविधताओं पर गर्व है, लेकिन हम एक ही ग्रह पर रहने वाले वासी हैं।
धरती हमारा घर है जो संकट का सामना कर रही है। अब समय आ गया है कि हम चुनौती को स्वीकार करें।
आज की युवा पीढ़ी को नायाब पीढ़ी बनना होगा। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है, पर चुनौती को स्वीकार न करना और भी कठिन होगा।
प्रकृति को खूबसूरत बनाए रखने के लिए बहुत सी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं।
लेकिन व्यक्ति अपने योगदान से जो बदलाव ला सकता है उसे कोई नकार नहीं सकता।
दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
इस विषय पर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज, केयर ऑफ वन वर्ल्ड साउथ एशिया, C5 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016।
आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0114168900 और हमारा एक्सटेंशन नंबर है 116।
दोस्तों, किसी कारणवश अगर आप हमारा कार्यक्रम रेडियो पर ना सुन पाए हो तो आप हमारी वेबसाइट www.edaa.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं।
इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते बुधवार के दिन शाम 4:30 बजे और एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए मुझे सुरेश और आशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।